ਸਤ ਰੂਪ ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮੁਖ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨਿਓ। ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੁਗਤੀ ਸਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਮਸੀਤ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਸੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਲੇ ਸੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਾਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਹੀ ਪਰਿਚੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸਥੀ, ਵਰਦ ਤੇ ਵਿਪਰਿਣਮ ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਵਿਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਦ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ, ਫਿਰ ਵਿਪਰਿਣਮੇ ਤੇ, ਵਿਪਰਿਣਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਪਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 6 ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ 6 ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਯੁਕਤੀ ਸਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਾਂਤ ਵਾਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹਾਂ। ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸੱਤ ਕਿਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ? ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੋਂ ਮੇਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਉਸਕੋ ਸੱਤ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਕੋ ਸੱਤ ਕਹਿਤੇ ਹੈ? ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੋਂ ਮੇਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਤਾ ਉਸਕੋ ਸੱਤ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭਵਿਸ਼ਿਤ ਕਾਲ, ਜੋ ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਜੈਸਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਵੋ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਹੂੰ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਭੂਤ ਮੇਂ ਵੀ ਥਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੇਂ ਵੀ ਹੂੰ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ਿਤ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਮੇਂ ਵੀ ਹੂੰ, ਮਧਿਆਨ ਮੇਂ ਵੀ ਹੂੰ ਔਰ ਸਾਇੰਕਾਲ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਏਕ ਜੈਸਾ ਹੂੰ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਮੇਂ ਹੂੰ ਵੋ ਮੈਂ ਮਧਿਆਨ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਂ ਔਰ ਸਾਇੰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਬਦਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਹੂਆ ਤਭੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਤਾ ਨਾ, ਕਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੈਸਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਔਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਜਦੀ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਬ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਸਵਪਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕਾ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਅਭਾਵ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਸਵਪਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ ਤਬ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸਵਪਨ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ ਤਬ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਭਾਵ ਹੁਆ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੋਂ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਵੋ ਸੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਕਸ਼ ਮੇਂ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਵਰਸ਼ ਮੇਂ ਹੈ, ਸਭੀ ਕਾਲ ਹੀ ਤੋ ਹੈ ਨਾ, ਪਕਸ਼ ਮੇਂ ਵੀ ਵੋਹੀ ਹੈ, ਪਕਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਤੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਰਿਤੂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਕਾ ਪਕਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਲਪ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਨਵੰਤਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਲ ਹੀ ਤੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਤੋ ਇਨ ਸਭੀ ਮੇਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਨਾ, ਔਰ ਸੁਕਾਲ ਸਭੀ ਵਸ ਕਾਲ ਕੈ, ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਸੁਕਾਲ ਸਭੀ ਵਸ ਕਾਲ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਭੂਤ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿਸ਼ਿਤ ਕਾਲ ਯੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਸਹਿਤ ਸਭੀ ਵਸ ਕਾਲ ਕੇ, ਇਨਕਾ ਸਭ ਕਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੈ, ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਐਸਾ ਕਾਲ ਹੈ ਵੋ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕਾ ਕਾਲ, ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ, ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਰੋਗ ਸੁਖ ਦੁੱਖਨ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਕਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕਾ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਤੋ ਯੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਖ ਸੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤ ਹੂੰ, ਜੋ ਸੱਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੋ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਤੋ ਵਿਦਿਅਤੇ ਭਾਵੋ, ਨਾ ਭਾਵੋ ਵਿਦਿਅਤੇ ਸਤਾ, ਇਹ ਗੀਤਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਸਤੋ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਅਸਤ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕਭੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ, ਅਸਤ ਕਭੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੋ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਜੋ ਸੱਤ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕਭੀ ਅਭਾਵ ਹੋਤਾ ਹੈ। जो सत है वो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, जो असत है वो किसी काल में भी नहीं होता। तो मैं सत हूं ये गुरु के मुख से मैंने जाना, गुरु ने बतलाया कि तू ही तीनों कालों में रहने वाला है। फिर अपने आप को विचार करना है ना कि मैं कैसे रहता हूं तीनों कालों में। जैसे स्थूल शरीर है और जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में किसी भी चीज को हम जानते हैं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, चेष्टा कर रही हैं, और विषय भी हमारे सामने है, इंद्रियां भी हैं और जागृत अवस्था है। उस समय व्यवहार होता है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन इस व्यवहार को हम स्पष्ट रूप से साक्षी रूप से समझते हैं कि मेरी आंखें देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी जीभा बोल रही है। ये देखता कौन है? हम देखते हैं ना, इसलिए देखने वाला अलग होता है दृश्य से। तो ये आंखें भी दृश्य है, कान भी दृश्य हैं, जो सामने वाले हैं वो तो दृश्य है ही हैं, जिनको आंखें देखती वो भी दृश्य है, लेकिन साक्षी रूप से हम देखेंगे तो आंखें भी हमारा दृश्य है, क्योंकि इनको हम जानते हैं। थोड़ा सा भी गड़बड़ करती तो हमारे को पता चल जाता है कि आंख गड़बड़ कर रही है, आंख फरक रही है, आज सही नहीं है। ऐसा जब जानते हैं तो हम जानने वाले अलग हुए ना। हम आंख नहीं है, ना आंख का धर्म हमारे में है, लेकिन हम आंख तो अपने आप को नहीं मानते। धर्मी का तो हमारे में अध्यास नहीं होता, धर्म का होता है। आंख का धर्म है देखना, तो हम क्या कहते हैं, मैं देखता हूं। जो आंख का धर्म था उसको हमने अपने में मान लिया, आंख देखती है, लेकिन हम कहते हैं मैं देखता हूं। मैं नहीं देखता हूं, मैं तो आंख को देखता हूं कि आंख देखती है कि नहीं देखती, लेकिन हम अपने आप में उसके धर्म को अपने में ले लिया। आंख का काम है देखना सुनना, कहते मेरे को नहीं सुनता, सुनता तो कान को नहीं है, लेकिन हम कहते कि मेरे को नहीं सुनता। तो कान का काम था सुनना, वो हमने अपने में मान लिया, तो इसलिए हमारे को आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा। जब कान सुनते हैं तब भी हम हैं, जब नहीं सुनते तब भी हम हैं। जो बहरा है उसको पूछो कि तुम हो कि नहीं, वो कभी कहता कि मैं नहीं हूं, वो कहता मेरे कान नहीं है, मेरे कान नहीं सुनते, ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। तो हम ही ऐसा समझेंगे तभी पता चलेगा ना, जब बहरा बिना कान के भी है तो इसका मतलब उसका स्वरूप कान से अलग है। तो जो अंधा है उसको दिखता भले नहीं, आंखें उसकी नहीं देख पा रही, वो तो है, इसका मतलब आंखों से अलग है ना कोई आदमी, आंखों से अलग आत्मा है, आंखों के होते हुए भी रहता है, बिना आंख के भी रहता है, ऐसा मैं हूं। जब जागृत में ये इंद्रिय काम करते हैं तब भी मैं रहता हूं, जब स्वप्न में ये इंद्रिय काम नहीं करते तब भी मैं रहता हूं। यदि मैं नहीं होता तो स्वप्न कौन देखता? स्वप्न को देखने वाला कौन है? साक्षी है। तो स्वप्न जो है वो देखता तो जीव है, लेकिन वो साक्षी भाष्य है, अपने आप तो नहीं देख सकता ना। वहां एक स्वप्न के पदार्थ हैं, एक स्वप्न को देखने वाला शरीर है। स्वप्न में हम जाकर के गंगा स्नान कर रहे हैं, एक शरीर गंगा में स्नान कर रहा है, एक बाहर खड़ा देख रहा है, लेकिन कहां से आया? कोई भी शरीर नहीं है वहां, एक बाहर खड़ा है, एक अंदर मतलब डूब रहा है, एक देख रहा कि मैं डूब गया हूं गंगा में, और बाहर खड़ा देख भी रहा है स्वप्न में। तो दो शरीर कहां से आ गए? जो स्थूल शरीर हो तो यहीं पड़ा है, वहां दो और हो गए, एक डूब रहा है गंगा में, एक देख रहा कि मैं डूब गया हूं। तो वो कुछ भी नहीं है। अनादि माया सुतो जदा जीवा प्रबुद्धते, कहते हैं शास्त्रकार की जब अनादि माया से सोया हुआ जीव जब जागता है तभी प्रबुद्धते, तभी उसको पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं था सपने। इसलिए सपने का दृष्टांत बार बार देते ना गुरु महाराज कि ये संसार जो है कैसा है, सपने जैसा है। जा कहते हैं गुरु महाराज जी कि ये जग धुएं का पहाड़, ये तो धुएं का पहाड़ है, धुएं का पहाड़ कभी सत्य नहीं होता, देखता जरूर है लेकिन सत्य नहीं होता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ए जग धुएं का पहार, तैं साचा माने केहे विचार। कहते हैं महाराज जी कि बतलाओ तैने साचा इसको माना कैसे, क्या ज्योति है आपके पास पीजे सत्य है। हम कहते हैं जे जग धुएं का पहार, ये तो धुएं का पहाड़ है, धुएं के पहाड़ किसे कोई काम नहीं होता, उसके ऊपर नहीं कोई चढ़ सकता। इसलिए कहते हैं कि सत्य अपने आप को मानते इसलिए हैं कि जब जागृत अवस्था है तब भी मैं रहता हूं, जब स्वप्न होता है तब भी मैं रहता हूं, फिर सुषुप्ति में जाकर के ना जागृत है ना स्वप्न है, लेकिन उठ करके कहते हैं आज बहुत आनंद से सोया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो वहां पर भी जो पता ही नहीं चला, जे अज्ञान था इसको किसने जाना, इसको किसने जाना। वहां हम थे तभी हमने जाना कि पता ही नहीं चला इसने आनंद से सोया। तो ये वहां पता चलता सुषुप्ति में भी हम हैं, इसलिए उस अज्ञान को हमने प्रकाशित किया कि पता ही नहीं चला। तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में रहता है वो सत्य है। तो हम जागृत में भी हैं, स्वप्न में भी हैं, जागृत सुषुप्ति में भी हैं। इसलिए कहते मैंने गुरु से सुन करके सतगुरुओं के शरण में जा करके सुना, तो फिर निश्चय किया कि मैं सत्य हूँ, अपने आप नहीं पता चला। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, कोई लौकिक कार्य सीखने के लिए गुरु चाहिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो बिना गुरु के बात ही नहीं चलती। कोई भी काम, रोटी बनाना सीखना हो तब भी गुरु चाहिए, कुछ भी काम सीखना, तो गाड़ी चलानी सीखनी है, कुछ भी करना तो गुरु चाहिए। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक जो अपने आप का ज्ञान है उसके लिए गुरु की जरूरत है। तत्व ज्ञानार्थम सगुरु मेवा विगच्छेत, ऐसा मांडू के श्रुति में लिखा है कि उस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में कोई भेटा लेकर के और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि काचे गुरते मुक्त ना हुआ। जो कच्चा गुरु होता है उसे मुक्ति नहीं होती है। माए मुंड होते गुरु की जाते पर मन जाए, आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए। कबीर जी कहते हैं महाराज कि ऐसे गुरु की माँ का सिर मन दो, माए मुंड होते गुरु की जाते पर मन जाए। भाव एक मतलब फिटकार देते हैं वो कि ऐसी माता चाहिए ही नहीं जिसने ऐसा पैदा किया। जननी जनता भक्त जन कह दाता कैसूर, नहीं था जननी बांझ रहे काहे गुबावे नूर। इसलिए कहा ना कि वो ऐसे भक्त को सूरमे को दानी को जन्म दे, नहीं तो ना ही दे। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु चाहिए पक्का। ओए जे बंदे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़, ऐसे संतों से कहते ना प्रीति करो, महापुरुषों से जो जीते हुए भी नहीं छोड़ते और मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। तो इसलिए गुरु की जरूरत होती है, जब गुरु की शरण में जा करके। इसलिए कहते हैं कि कितना भी प्रकाश चंद्रमा सूरज का हो जाए, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरु के बिना अंधेरा दूर नहीं होता। गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु तो बिना समझ नहीं आती, गुरु चाहिए। तो ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को सत्य माना है गुरु की कृपा से, और फिर सत्य मानने के बाद मैंने कहा कि मैं सत्य भी हूं और चित्त भी हूं। चित्त कौन होता है? चित्त मतलब चेतन, चेतन का अर्थ है प्रकाश। चेतन उसको कहते हैं जो अपने आप को भी जानता है दूसरे को भी जानता है, उसको चेतन कहते हैं। तो मैं सत्य भी हूं और चित्त भी हूं। चित्त इसलिए हूं कि मैं अपने आप को भी जानता हूं और जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है इसको भी मैं जानता हूं। स्थूल सूक्ष्म जो कारण शरीर है इसको भी मैं जानता हूं। अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में जो कोश है उनको भी मैं जानता हूं। जब ये रहते हैं तब भी मैं जानता हूं, जब ये नहीं रहते तब भी मैं जानता हूं। तो जो मतलब जो जानता है अपने आप को, दूसरे को भी जानता है। जो अपने आप को जानेगा वही दूसरे को जानेगा ना। जो जड़ है वो अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। ये जितने पड़े हैं पदार्थ, ये अपने आप को भी नहीं जानते और दूसरे को भी नहीं जानते, इसलिए ये जड़ हैं। हम अपने आप को भी जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। अपने आप को हम कैसे जानते हैं ये बात अलग है। अपने आप को हम कैसे जानते हैं ये अलग बात है, जानते तो हैं लेकिन हम अपने आप को जिस रूप में जानते हैं इस समय जान रहे हैं ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। हम अपने आप को स्थूल शरीर में जानते हैं, हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर में जानते हैं ऐसा नहीं जानना, अपने आप को सत्य रूप में जानना, आत्मा रूप में जानना। सामान्य रूप से हम अपने आप को जानते हैं लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते, इसलिए हम अपने आप को सच्चित आनंद नहीं समझ पाते। तो यह कहते जब गुरुजी ने कृपा की मेरे को युक्ति बताई कि तुम सच्चित आनंद हो, तब मैंने गुरुजी से पूछ करके चिंतन किया कि मैं सत कैसे हूँ, चत कैसे हूँ, चित्त मैं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति को। जो जागृत है वो स्वप्न को नहीं जानती, जो स्वप्न है वो जागृत को नहीं जानती, जो स्थूल शरीर है ये भी नहीं जानता। यहाँ तक है कि जो हमारे इंद्रिय है ना, जो ज्ञान इंद्रिय, ये पदार्थों को तो जानते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। आंखें कान को नहीं जानती, कान आंखों को नहीं जानते, आंख अपने आप को नहीं जानती, और की बात छोड़ो आंख से आंख को नहीं देख सकते बिना शीशे के, बिना शीशे के किसी को कहो तुम अपनी आंखों को देखो, आंखों से पूरे संसार को देखेगा लेकिन अपनी आंखों को नहीं देख सकता। आंखें जड़ है, इनकी देखने की शक्ति है ही नहीं उसमें, केवल हमारी सत्ता से देखती है आंखें। जब हमारी सत्ता हट जाएगी तो नहीं देखेगी, इसलिए तो कहते हैं ना कि इंद्रियों का दमन करो। दमन का अर्थ क्या, अपने अधीन, इसलिए दमन कर पाएंगे ना। जो दुश्मन हमारे अधीन तभी होगा जब हमारी शक्ति उससे ज्यादा है, नहीं तो हम दमन नहीं कर सकते। तो जब इंद्रियों का दमन मन का शमन कहते हैं, इसका मतलब हमारी शक्ति उनसे ज्यादा है ना, हम उनको दमन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता कि अपनी शक्ति को पीछे हटा लोगे नहीं, हम आपको यहाँ देखने की शक्ति नहीं देंगे, जहाँ हमारी मर्जी होगी देखने के लिए वहाँ शक्ति देंगे। यही तो दमन है, जब अपने अधीन हो जाएंगी आंखें तो हम हमारी मर्जी जहाँ होगी वहाँ देखेगी वो, जो हमारे को गलत लगेगा उसको हम देखने नहीं देंगे। यही तो दमन है, इसका मतलब बिना हमारी शक्ति को वो नहीं देख सकती ना। तो जब हम उनके अधीन हो जाते हैं तब वो अपने आप हमारे को खींचती है, फिर वो जहाँ कहती हम वहाँ देखते हैं। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि जहाँ हम कहें वहाँ वो देखें, उल्टा हो रहा है। नौकर जो है उसने स्वामी को अपने बस कर रखा है, ये तो सब हम साक्षी है ना, साक्षी। इसलिए कहते हैं कि चेतन मैं हूँ, प्रकाश मेरा है सब जगह। चेतन मतलब प्रकाश, मेरा प्रकाश है, सूर्य में मेरा प्रकाश है, चंद्रमा में मेरा प्रकाश है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं जदों गुरु महाराज जदों कहते आ भी नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे, मैं नमस्कार करता हूँ जो सूर्यों का सूर्य है, जो चंद्रमाओं का चंद्रमा है, वो कौन है, ब्रह्म है, वो मैं हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो मैं मेरा ही प्रकाश है ना, मैं ही सूर्यों का सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमाओं का चंद्रमा हूँ, मेरे से ही ये प्रकाश तो हो रहे हैं। तो ये कहते हैं ऐसा मैं चेतन हूँ, मैं सत्य भी हूँ मैं चेतन भी हूँ, तीनों कालों में रहता हूँ और मेरा ही प्रकाश सब जगह है। जो लाइट प्रकाश कर रही ये भी मेरा प्रकाश है, सूर्य में मेरा, चंद्रमा में मेरा, सब जगह मेरा ही प्रकाश है। यदि मेरा प्रकाश ना हो तो ये प्रकाशित नहीं कर सकते। ऐसा अपने आप को चेतन मैंने माना गुरु की कृपा से। फिर है आनंद, सत चेतन और आनंद। आनंद कहते हैं जो परम प्रिय का, परम प्रीति का विषय होता है उसको आनंद कहते हैं। परम प्रीति का विषय होता है, प्रीति एक होती है, एक परम प्रीति होती है। तो परम प्रीति का विषय मैं हूँ, आत्मा। वैसे संसार के विषय प्रिय हैं, सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन अति प्यारे नहीं हैं, अत्यंत प्यारे नहीं हैं, क्योंकि परम प्रीति का विषय कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि जितने संसार में प्रीति है वो केवल आत्मा के लिए है। जितने संसार के विषयों में हम प्रीति करते हैं अपने लिए, जो हमारे में प्रीति है वो किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं। जो आत्मा में जो प्रीति है ना वो किसी के लिए नहीं है, जो सब में प्रीति वो आत्मा के लिए है। समझ में आ रही महाराज? जैसे कोई पिता जो है ना अपने पुत्र के दोस्त के साथ प्रेम करता है, दोस्त के साथ, वो क्यों प्रेम करता है? दोस्त जो उसके लड़के का दोस्त है उससे माता पिता क्यों प्रेम करते हैं? केवल अपने लड़के के लिए, उसके लिए प्रेम नहीं उनका, वो अपने लड़के के लिए उससे प्रेम करते हैं। आज ही वो दोनों यदि लड़ पड़ते हैं तो वो अपने लड़के को नहीं डांटेंगे, उसी को डांटेंगे, तुम्हारा ही दोष है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनकी जो उनसे साथ प्रेम था वो अपने लड़के के लिए है, उसके लिए नहीं है। तो प्रिय कौन हुआ? वो भी प्रिय है लेकिन किसके लिए? लड़के के लिए। लड़का प्रिय क्यों है? अपने लिए, क्योंकि लड़के को देख के अपने को सुख मिल रहा है। लड़का प्रिय नहीं है, यानी कि हमारा प्रेम जो है लड़के के लिए है, लड़के में प्रेम हमारा अपने लिए है, हमारे को सुख मिलता है। वही लड़का यदि कोई दुष्ट कर्म कर देता है या कारागार में चला जाता है तो माता पिता पीछे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उससे सुख नहीं मिल रहा ना। सुख तो अपना चाहिए, अपने लिए सुख है। धन में सुख किस लिए? धन को जो प्रीति हमारी धन के साथ, वो धन के लिए नहीं है, वो अपने लिए है कि धन होने से हमारे को सुख मिलता है। ये ही देखना कि परम प्रिय कौन है। परम प्रिय तो हमारा आत्मा है ना, वो प्रिय तो है लेकिन परम प्रिय नहीं है, अत्यंत प्रिय नहीं है, अपने लिए नहीं ना वो। उनके लिए हमारा प्रेम नहीं, अपने लिए प्रेम है। पति का पत्नी में प्रेम है तो किसके लिए? अपने लिए। पत्नी में प्रेम उसका अपने लिए है, पत्नी के लिए नहीं है। पत्नी का पति में प्रेम किस लिए है? अपने लिए। कोई भी किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। इसलिए कहते मैं परम प्रिय का विषय हूं, मैं परम प्रिय हूं, मैं आनंद स्वरूप क्यों हूं? कि जितना संसार में प्रेम है वो मेरे लिए, मैं अपने लिए करता हूं। जैसे शरीर में प्रेम करते हैं तो शरीर भी प्रिय लगता है ना सबको। शरीर को कितना पालन पोषण में हम लोग कितना यत्न करते हैं कि शरीर को कुछ ना हो, प्रिय लगता है ना, लेकिन किसके लिए? अपनी आत्म सुख के लिए शरीर में प्रेम है। जब शरीर में कोई आपत्ति आ जाती है ना, कोई मानो कुछ हमारे को कभी कोई आपत्ति आती है शरीर के ऊपर, तो फिर शरीर की परवाह नहीं करता, उससे ज्यादा इंद्रिय प्रिय होते हैं शरीर से ज्यादा। मानो कोई हमारे ऊपर कोई प्रहार करता है ना दुश्मन, तो जहां हमारे को कोई पीटता है तो हम कहते हैं कि शरीर के ऊपर भले मार दो लेकिन मेरी आंखों के ऊपर मत मारना, या मेरे कानों में मत कोई चीज मारना। इससे ज्यादा हमारे इंद्रिय प्रिय हैं। हम जब भी कोई मारता तो आंखें बचाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब इससे ज्यादा ये प्रिय हैं, आंख कान इनको बचाने की कोशिश करते हैं। भी और कहीं भले चोट लग जाए लेकिन हमारी आंख कान बच जाए, तो इससे भी ज्यादा ये प्रिय हैं। इसका कुछ हो भी जाएगा तो इससे आनंद लेंगे। तो प्रेम तो मतलब अपने लिए है। यदि कोई उससे भी ज्यादा कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर हम शरीर की और इंद्रियों की भी परवाह नहीं करते, फिर कहते हैं कि और कुछ जो मर्जी करो। जैसे मानो किसी को राजा के या कहीं सरकार की तरफ से कोई गलती करने से मृत्यु दंड होता है ना, मृत्यु दंड, वो क्या करता है? उसको अब शरीर प्रिय था पहले, अब उसको आत्मा के लिए चाहता कि जब तक भी सुख मिले कहीं ना कहीं से वो कहता है, अपील कर देता है कि मेरे को क्या उसको बोलते हैं, आजीवन कारावास दे दो लेकिन मृत्यु दंड ना दो, कि उसको प्राण प्रिय है कि मेरे प्राण बचे रहे। सारी जिंदगी ये शरीर मतलब जो है पड़ा रहे कारागार में लेकिन प्राण बचे रहे, कहता मेरे को प्राण दंड मत दो, मतलब मृत्यु दंड ना दो मेरे को, आजीवन कारावास भी ठीक है क्योंकि प्राणों से प्रेम है, प्राण बचे रहे। तो प्रिय क्या हुआ? परम प्रिय मैं हूं। प्राण में प्रिय है लेकिन परम प्रिय नहीं है, सभी को छोड़ता जा रहा है ना। यदि परम प्रिय होता तो छोड़ता नहीं, अपने लिए प्रेम है। तो यदि कोई भयंकर रोग पकड़ लेता है, उसको कुष्ठ हो जाता है, उसको कैंसर हो जाती है, डॉक्टर जवाब देते तो फिर क्या कहता है, कि मेरा जो है मेरे प्राण छूट जाए, कोई ऐसा अनुष्ठान करो कि मेरे प्राण छूटने से मैं सुखी हो जाऊं। इसका मतलब प्राणों से आगे भी उसको कहीं ना कहीं प्रेम है। तो प्राण में जो है ना प्रिय है, परम प्रिय नहीं है, परम प्रिय अपना आप है। अंत में प्राण को छोड़ के भी सुखी होना चाहता है, तो प्राण को छोड़ने के बाद कौन सा सुख है? अपने आप का अविनाशी सुख, अपना आसन, वो सुख है ना जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये इंद्रियों का, शरीर का, प्राणों का सुख जो है विनाशी है, थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन इसके बाद में जो असली सुख है ना वो अविनाशी सुख क्या है? आपन आसन। आपन आसन का अर्थ है अपने स्वरूप में, स्थिति में होने में अविनाशी सुख है। तो ऐसा कहते हैं कि मैं गुरु के मुख से जाना है कि मैं परम प्रिय हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। वैसे तो आनंद आनंद सब कोक है, सारे लोग कहते हैं कि खाने में बड़ा आनंद लिया, सोने में बड़ा आनंद लिया, यात्रा में बड़ा आनंद लिया, सिनेमा देखने में बड़ा आनंद लिया, पर कहते हैं गुरु महाराज कि आनंद गुरु ते जानिया, यही तो कह रहे हैं विचार चंद्रोदयकार कि मैंने गुरु के मुख से जाना कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो गुरु अमरदास महाराज जी भी कहते मैं गुरु से जाना, सारे लोग कहते थे बड़ा आनंद है बड़ा आनंद है, लेकिन आनंद गुरु ते जानिया, मेरे को तो कहीं आनंद नहीं आया, मैंने तो गुरु अंगद देव महाराज जी के शरण में जा करके जाना है। आनंद किसको कहते हैं? जाण्या आनंद सदा गुरते, जिसने भी जाना है ना, आनंद लिया है, जिसने स्वरूप का साक्षात किया, उसने गुरु से ही किया है और किसी से नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं कि गुरु ने जब कृपा की तो मैंने सतगुरु के मुख से पहचान्यो कि सचित आनंद स्वरूप ही मैं सचित आनंद स्वरूप हूं। ये मैंने गुरु की कृपा से जाना, गुरु की शरण में जा करके जाना है, बिना गुरु के नहीं पता चला। तो फिर कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो आदक तीनों काल ही मैं परमान्यो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीन है अवस्था, अथवा जो भूत वर्तमान भविष्य जो काल है, या प्रातः मध्यान्ह सायंकाल है, ये सभी के बीच में कहते मैं परमान्य हूं, मैं ही प्रमाणिक हूं, भाव साक्षी रूप हूं, जहां इनसे मैं परे हूं, इन तीनों कालों से मैं परे हूं, असंग हूं, सूक्ष्म हूं इनसे, ये सब विनाश हैं, दृश्य हैं, मैं साक्षी हूं। एक काल जब होता है दूसरा नहीं रहता, दूसरा आता तो तीसरा नहीं रहता। भूत में वर्तमान नहीं था, वर्तमान में भूत नहीं है ना भविष्यत है, भविष्यत में ना भूत होगा ना वर्तमान होगा। तो इसका मतलब ये व्यभिचारी हैं, व्यभिचारी कहते हैं जो बदल जाते हैं, अपने अधिष्ठान को छोड़ के जो और कहीं रहता उसको व्यभिचारी कहते हैं। तो ये व्यभिचारी हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ नहीं रहते, और अधिष्ठान के साथ भी इनका व्यभिचार है। अधिष्ठान इनका मैं हूं, ब्रह्म हूं, आत्मा है, तो आत्मा के साथ भी व्यभिचार है इनका ना, एक रहता है दूसरा नहीं रहता। तो इनके अभाव को भी मैं जानता हूं, जब ये रहते हैं तब भी मैं जानता हूं, इसलिए कहते हैं इन तीनों कालों में मैं साक्षी रूप हूं। ये तीनों काल दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, इनको जानने वाला हूं। जागृत आदि लयाविद तीनों जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं, ये लयता वाली हैं, इनका लय हो जाता है, इनका अभाव हो जाता है, इनका स्वभाव है लय होने का, लय का मतलब नाश हो जाती है। वैसे जो जितने अज्ञान के पदार्थ हैं ना, झूठा जो असत है ना, इसका क्रिया से नाश नहीं हो सकता, ज्ञान से बाध नहीं हो सकता, ये है ही नहीं वास्तव में, है नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी प्रतीति दृढ़ होती है, लगता है कि हमने इनको नाश किया, अभाव हो गया, जो है ही नहीं तीनों कालों में, उसमें असंभव ही नहीं ये बातें, जो हुआ ही नहीं ना उसका नाश कैसे होगा, अथवा उसका ज्ञान से बाध कैसे होगा, सत्य वस्तु को हो सकता है ना। इसलिए जे जितना है ना केवल अध्यास मात्र है, भ्रम मात्र है, लेकिन प्राप्त की प्राप्ति है, होता कुछ भी नहीं है, अप्राप्त का हटाना क्या, जो है ही नहीं उसको हटाना क्या है, लेकिन हमने उसको प्राप्त माना हुआ है ना, इसलिए उसका केवल भ्रम हटाया जाता है, किसी वस्तु को हटाया नहीं जाता। प्रपंच कहीं भी नहीं जाता ना आता है, लेकिन प्रपंच का भ्रम हटाते हैं महात्मा लोग, इस संसार की भ्रांति को हटाते, संसार को कुछ नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही है, क्योंकि हुआ ही नहीं। वो जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए कोई ये थोड़ी कि हट जाएगा, या वो खाना छोड़ देगा, या पीना छोड़ देगा, या सोना छोड़ देगा, या व्यवहार छोड़ देगा, छोड़ता कुछ नहीं है, भ्रांति को खत्म कर लेता है, भ्रांति खत्म करते हैं और कुछ नहीं करते। कोई जल को साफ करने के लिए कहा जाता है तो जल कभी गंदा ही नहीं होता, जल के ऊपर से जाला केवल हटाया जाता है, जल को कुछ नहीं किया जाता, जल तो वैसे का वैसा ही है, ऊपर से जाला हटाने के लिए कहा जाता है कि ऊपर से जो गंदगी पड़ी है ना उसको हटाओ। तो ये जो हमारे स्वरूप के ऊपर क्या है, जो भ्रम की परत पड़ गई ना, परत को हटाना है केवल, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, कहीं से लाना नहीं अपने आप को, सत्य को कहीं से निकालना नहीं है, और सत्य के जो सत्य के ऊपर असत का भ्रम हो गया ना उसको हटाना है। सत्य तो है ही है, सत होता असत कर मान्या, सत था उसको असत मान लिया हमने, गुरु महाराज कहते हैं सत होता असत कर मान्या, जो सत था उसने उसको हमने असत मान लिया, इसलिए कहते हैं कि साधो एहो तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पहचानो। कहते ए भाई जिज्ञासुओ, ये जो तन है ना, जो बाहर का ढांचा है, ये मिथ्या है, इसको सत्य मत मानो, या भीतर जो राम बसत है, इसके अंदर जो राम है ना, जो घट घट में रहता है, साचो ताहे पहचानो, सत्य तो वो है, आपने झूठा इसको सत्य मान रखा है। साधो रचना राम बनाई, एक बिन से एक अस्थिर माने, चर्च लख्यो न जाई। कहते कि आश्चर्य की बात है कि एक बिन से एक सामने हुए मर रहा है, एक अस्थिर माने, एक अपने आप को स्थिर मान रहा है, ये कितनी आश्चर्य की बात, हैरानी वाली बात है। गुरु महाराज कहते कैसी हैरानगी है कि देखते हुए भी असत मान, उसको असत नहीं मानता, एक बिन से एक अस्थिर माने, एक अपने को स्थिर मान रहा है, अचर्ज लख्यो न जाई। ये बात कहते आश्चर्य वाली है, समझ में नहीं आती, है ही कुछ नहीं, कौन मुआ रे, कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मेरे करो बेचारा, ये तो चलत पाया, कहते कोई मरा ही नहीं है, कौन मुआ है, कोई मरा ही नहीं है, लेकिन मरा समझता है ना, इसलिए रोता है, दुखी होता है। जब महाराज निर्णय कर रहे हैं भी कोई मरा ही नहीं है, तो फिर क्या, फिर हम क्यों कहते मरा है, हमारा ये मर गया, हमारा वो मर गया, इसलिए कहते भ्रांति है सब। ये जो भ्रांति थी कहते हमने गुरु की कृपा से हटाई, अपने आप को सत चेत आनंद मान लिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है ये सब भ्रांति है, मैं इसका साक्षी हूं। और ये लय वाले हैं, इनका लय हो जाता है, कब लय होता है, जब ज्ञान होता है, तब तक नहीं होता लय, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत्य है, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक थोड़ी पता चलता है कि जागृत नहीं है, तब तक तो जागृत में अपने आप को चिपका लेते हैं हम, जब ज्ञान होता है तब इनका लय होता है, ज्ञान के द्वारा इनका लय होता है। तो ये कहते हैं जब ये होती हैं तब भी मैं जानता हूं, जब इनका लय होता है तब भी मैं जानता हूं, जब इनका नहीं लय होता तब भी मैं जानता हूं, जागृत जब है तो तब भी मैं जानता हूं, जब स्वप्न में इसका लय हो गया तब भी मैं जानता हूं, तो मैं इसके लय रूप में भी हूं, जब ये लय है तब भी मैं हूं, लय मतलब अभाव ना होना, समझ गए, लय का अर्थ है ना होना, जब अभाव हो जाता है ना जागृत का तब भी मैं जानता हूं, जब जागृत अवस्था रहती तब भी मैं जानता हूं। तो तीनों काल विषय सब जानू, काल ही हो इसते सत मान्यो, जागृत आदि लय विद तीनों, जागृत आदि तीनों लय प्रकार वाली है, इनका अभाव हो जाता है, और तीनों काल विषय सब जन हूं, मैं इनको तीनों कालों में जानता हूं, तीन काल का भी अभाव हो जाता है लेकिन मैं इनको जानता हूं। या हित मैं चित रूप ही जान्यो, इसलिए मैंने अपने आप को चित रूप माना, सात रूप में इसलिए माना को मैं तीनों कालों में रहता हूं। इसलिए मैंने अपने आप को सत माना। और जो तीनों काल हैं, जो तीन अवस्थाएं हैं, इनको मैं तीनों कालों में जानता हूं, इसलिए मैं चित हूं। खोल के बता रहे हैं, सत इसलिए क्योंकि मैं तीनों कालों में रहता हूं, चित इसलिए क्योंकि मैं तीनों कालों को भी जानता हूं, इसलिए मैं चित हूं। ये दो का विशेषण किया। तीसरा है आनंद। कहते हैं कि मैं परम, मैं प्रिय हूं धन पुत्र रूप उद्गल। मैं धन से, पुत्र से, शरीर से, तीनों से प्रिय हूं, इसलिए मैं परम प्रिय का विषय हूं, परम प्रीति का विषय हूं, इसलिए मैं आनंद हूं। क्योंकि धन भी प्रिय होता है, धन प्रिय होता है, उसके बाद पुत्र प्रिय होता है, फिर शरीर प्रिय होता है। पहले बताया था ना कि धन प्रिय है, धन से प्रीति होती है पुत्र के लिए। कभी पुत्र के ऊपर कोई आपत्ति पड़ती है तो धन दे करके छुड़ा लेते हैं। धन भी प्रिय था लेकिन उससे ज्यादा पुत्र प्रिय था। लेकिन जब कभी कोई ऐसा समय आता है अपने आप को सुखी करने के लिए, पुत्र को भी बेच देते हैं, बेचते हैं कि लोग बेच देते हैं ना पुत्र को। धन प्रिय था पुत्र के लिए, धन से पुत्र प्रिय था, लेकिन जब कोई आपत्ति पड़ी तो पुत्र को बेच दिया अपने के लिए। तो पुत्र से मैं, मेरा शरीर प्रिय है, तो जब शरीर के ऊपर आपत्ति पड़ी तो शरीर को भी छोड़ दिया अपने लिए। तो इसलिए कहते हैं कि मैं धन पुत्र और शरीर से मैं परम प्रिय हूँ, सबको छोड़ दिया ना अपने लिए। इसलिए ये प्रिय तो हैं लेकिन परम प्रिय नहीं है सभी। पहले भी एक दिन बतलाया था कि प्रीतम जान ले हो मन माही, गुरु महाराज कहते हैं प्रियतम जान ले हो। प्रिय को नहीं कहते जानो, ना प्रिय को जानो, ना प्रिय तर को जानो, प्रियतम को जानो। प्रियतम तो अपना आप है, प्रिय संसार के विषय हैं, प्रियतम हमारे इंद्रिय प्राण प्रियतर हैं, लेकिन हम प्रियतम हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रिय को नहीं जानने के लिए कहा, ना प्रियतर को कहा, उन्होंने कहा प्रियतम जानो, अपने आप को जानो। तो प्रियतम जान, गुरु महाराज कहते हैं संसार में तेरे को जानने वाली चीज केवल प्रियतम है। भाव अपने आप को जानो, प्रियतम मैं हूं क्योंकि मैं सबसे प्रिय हूं। ये कहते हैं ऐसा मैंने गुरु की कृपा से जाना है कि मैं धन पुत्र और शरीर आदि से अलग हूं, ये मैंने जाना। तृप्त हूं मैं, अपने आप में तृप्त हूं। फिर कहते आत्म अर्थ सबे प्रिय, जो मैंने अभी बताया था कि मैं क्यों प्रिय हूं। आत्म अर्थ सबे प्रिय, आत्मा के लिए जो आत्मा अर्थ जितना प्रिय है ना संसार, आत्मा अर्थ मतलब आत्मा के लिए प्रिय है। तो आत्म आप ही है प्रिय, आत्म जो है अपने आप प्रिय है, वो किसी के लिए प्रिय नहीं है। यहां स्पष्ट किया उन्होंने ये बात। ये कहते हैं कि आत्म अर्थ सबे प्रिय, आत्मा के लिए सभी प्रिय हैं, लेकिन आत्म आप ही है प्रिय। आत्मा केवल अपने आप में प्रिय है, दूसरे के लिए प्रिय नहीं है। वो सब संसार के जितने प्रिय पदार्थ आत्मा के लिए हैं, लेकिन आत्मा किसी के लिए प्रिय नहीं है। आत्मा अपने आप के लिए प्रिय है, अपने आप में प्रिय है, किसी के लिए नहीं है वो। इसलिए कहते हैं ऐसा मैंने जब जान लिया तो दुख नसान्यो, मेरा सारा दुख निवृत्त हो गया। पहले दुखी तो इसलिए हो रहा था ना, अपने आप को सुखी करने के लिए सभी के पीछे दौड़ता था, और जिसके पीछे दौड़ता था वहां से सुख की केवल भ्रांति होती, मिलता दुखी ही था। यहां पर भी दौड़ता था सुख के लिए, थोड़ी देर के बाद वहां से दुख मिलता था। मेरे को भ्रम था कि वहां सुख है, लेकिन सुख था नहीं वहां। जब मैंने सबको देख लिया, अपने आप को जाना, तो सारे दुख की निवृत्ति हो गई। क्योंकि दुख तो विषयों में है ना, अहंता ममता में दुख है। मेरे में दुख नाम की कोई चीज नहीं, ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। मैं तो सुख की राशि, सुख स्वरूप हूं ना, इसलिए जो ये विषयक सुख दुख है ना, ये तो आता ही रहता है। विषयों में सुख भी होता है, दुख भी होता है। सुख दुख का बात क्या है, जो प्रतिकूलता होती है वहां दुख होता है, जो अनुकूलता होती है वहां सुख का अनुभव होता है। विषय तो वही होता है, एक ही जो रसगुल्ला है ना रसगुल्ला, उसमें जब तक प्रतिकूलता अनुकूलता रहती है तब तक सुख लगता है, मीठा लगता है, सुख लगता है। जब 10 दिन एक ही बार रसगुल्ला देते रहो तो प्रतिकूलता हो जाती है, उसी से दुख लगता है कि अब कैसे यहां से हटे, पता नहीं कब से खाते रहेंगे, कब हटेगा। तो बात तो वहां पड़ा है, रसगुल्ला तो अभी पड़ा है, लेकिन 10 दिन के बाद उसी में दुख लगने लगा क्योंकि प्रतिकूलता हो गई। तो पदार्थ में सुख कहाँ है, पदार्थ में ना सुख है ना दुख है, वो तो प्रतिकूलता ज्ञान है उसका कारण, उसका ज्ञान उसका कारण सुख दुख का क्या हुआ फिर, प्रतिकूल अनुकूल ज्ञान। जब अनुकूल ज्ञान है तो सुख का अनुभव हो रहा है, जब प्रतिकूल है तो दुख का अनुभव हो रहा है। तो विषय में क्या है, विषय में सुख दुख नहीं है, उसका कारण तो प्रतिकूलता अनुकूलता है, उसमें नहीं है। कारण को जानेंगे तो फिर कार्य अपने आप विनाश हो जाएगा। तो जब मैंने जान लिया कि मैं सच्चित आनंद हूं, तब सारे दुख की निवृत्ति हो गई। क्यों, जितना संसार में सुख है वो कहते हैं कि आत्मा का ब्रह्म का लेश मात्र है। पूरे संसार में जो सुख दिखता है ना, वो हमारा आत्मा का लेश मात्र सुख है। हमारे लेश मात्र सुख के सारा संसार सुखी हो रहा, हमारे सुख केवल लेश मात्र से, तो हम तो सुख की राशि हैं। तो इसलिए कहते हैं मैंने जाना कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। हाँ, परमानंद ये कहते हैं, या हित मैं सब तै प्रियतम रूह हूं परमानंद दुख ही भान्या। ये कारण से मैंने जाना कि मैं प्रियतम हूं, बाकी संसार के विषय प्रिय हैं, प्रियतर हैं, प्रियतम नहीं है, मैं प्रियतम हूं, परम प्रिय हूं। जो ममता अहंता के विषय जितने पदार्थ हैं ना, वो प्रिय हैं या प्रियतर हैं, लेकिन मैं प्रियतम हूं। जितने भी अहंता ममता के विषय पदार्थ हैं, अहंता का विषय हमारा शरीर है, ममता का विषय सारे शरीर के साथ संबंध रखने वाले पदार्थ ममता का विषय है, हमारा शरीर इंद्रिय प्राण ये अहंता का विषय है। तो ये अहंता ममता के जितने विषय है ना, वो सब प्रिय या प्रियतर हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रियतम हूं, क्योंकि ना मैं अहंता ममता का किसी का विषय नहीं हूं, ना मेरे में अहंता है ना ममता है। अहंता शरीर की होती है, ममता पदार्थों की होती है। तो ये तो सब अविद्या का कारण है, बीओ बीओ बीज अहम मम अंकुर। हमने अहंता ममता का बीज बोया है, कहते हैं ना भट्ट लोग अहम मम अंकुर, ये हमने बीज बिया है, अंकुर ममता ममता का है। तो इसलिए सारी उम्र कहते हमारी पाप करने में बीत जाती है। बोयो बीज अहम मम अंकुर, अहम मम का बीज बोया जिससे अंकुर निकला, जो सारा संसार उसी का अंकुर है ना, ये उसी से फूटा है ये पौधा अहंता ममता के द्वारा। ये कहते हैं कि मैं परमानंद हूं, परम आनंद हूं, इसलिए परम आनंद इसलिए हूं कि मैं सदा ही एक रस रहता हूं। जो मैं जागृत में है वो मैं स्वप्न में हूं, जो स्वप्न में हूं वो सुषुप्ति में हूं, इसलिए मैं परम आनंद हूं, मैं प्रियतम हूं। ऐसा जब मैंने जाना दुख ही भान्यो, तब दुख कहीं नहीं मिला। पहले मैं दुखी होता था जब मैं अपने आप को परिच्छिन्न मानता था, देश काल वस्तु से परिच्छेद मानता था अपने आप को, परिच्छेद से रहित नहीं मानता था। इस देश में मैं मानता हूं अपने आप को, उस देश में नहीं मानता हूं, इसलिए हम दुखी होते हैं ना। जब हम कहीं जाना चाहते हैं, जहां किसी दूसरे चीज को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए पकड़ना चाहते हैं कि हम वहां अपने आप को नहीं मानते। जहां से हम कहते हैं कि दरबार साहब जाएंगे, जहां कहीं मतलब मंदिर में शिवालय में जाएंगे, किस लिए, वहां जाके आनंद होगा, क्यों जाते हैं, क्यों हम अपने आप को वहां नहीं मानते, इसलिए जाना चाहते हैं कि वहां जाके आनंद होगा। तो जो सत्य होता है वो सब जगह रहता है, सभी कालों में रहता है, सभी देशों में रहता है, सभी वस्तुओं में रहता है, तो मैं सभी कालों में हूँ, सभी देशों में हूँ, सभी वस्तुओं में मैं हूँ, तो तब हमारे को वहां से आनंद कैसा आएगा? वहां जाकर के दरबार साहब में या शिवालय में जाने से आनंद कैसा होगा? हम अपने आप को वहां नहीं मानते, तो जो मानते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अपने आप को सब जगह मानते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं ना, वो इसी के कारण होते हैं, अज्ञान के कारण। जो अपने आप में तृप्त है ना, उसको कोई झगड़ा फसाद का मतलब ही नहीं है, इसलिए होते हैं। जो जितना झगड़े हो रहे हैं वो अज्ञानियों के होते हैं, ज्ञानियों के नहीं होते। जो ज्ञानी है उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है, जितनी मतलब मर्यादा बनाई गई है ना, वो जो जिज्ञासु हैं, जो थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते, उनके लिए होती है। जो जान जाते हैं उनके लिए मर्यादा नहीं होती, भले वो किसी को सिखाने के लिए मर्यादा रखते हैं, उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता भी आप मर्यादा नहीं रखते, क्योंकि वो तो ऊपर हो गया, वो सब जगह ही हो गए, वो तो उनको क्या मर्यादा की जरूरत है। लेकिन जो अब सब जगह नहीं हुआ अभी, उसके लिए मर्यादा है। इसलिए कहते हैं ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पे आते कर्म नाश। ज्ञान के लिए कर्म किए जाते हैं, ज्ञान भया तह कर्म नाश। जब ज्ञान हो गया तब कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो ज्ञानी हो गया है उसके लिए कर्म कहाँ होगा? तो जो हमारी लोगों की दृष्टि है, हम लोग कहते हैं भी ये नित्यनेम नहीं करते, अमृत वेड़े उठते नहीं हैं, उनको कहते हैं ना हम, जो उससे आगे चले गया उसको हम अपनी तरह समझ के कहते हैं। तो गुरु महाराज ने फैसला कर दिया कि उसके लिए कर्म नहीं है। ज्ञान भयाते कर्म है नाश, फल कारण फूली बन रहा है, फल लागे तब फूल बिलाए। जब तक फल नहीं आता तब तक फूल है, जब फल आ गया तो फूल रहेगा कहाँ, वहां नहीं रहेगा। तो ज्ञानी के लिए कर्म नहीं होता है, वो किसी की किसी को शिक्षा देने के लिए भले करता रहे वो, लेकिन उसके लिए नहीं होता। वो भले उठता है भले सोया रहता है कोई मतलब नहीं है, उसने वो अगली मतलब आगे वाली सीढ़ी पर चला गया, उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो जब तक हमने जाना नहीं था ना कि मैं सच्चिदानंद हूँ, तभी तक मैं कहता दुखी था। अब मैंने गुरु की शरण में जाकर के अपने आप को जान लिया कि मैं सच्चित आनंद हूँ, तो अब कहते हैं कि देह दशा ही अतीत सु आत्म। जो देह है जाग स्थूल सूक्ष्म कारण देह, और तीन अवस्था रूपी जितना प्रपंच है ना, इससे अतीत हूँ मैं, ऐसा मैं आत्मा हूँ, पूर्ण ब्रह्म पीताम्बर गान्यो। पीताम्बर जी कहते हैं ऐसा पूर्ण जो ब्रह्म है वो मैंने अपने आप को जान लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।